एतिकाफ दरअसल क्या है?
वही रोज़ा जो आप रखते हैं उसका मनतहा कमाल है। रोज़ा क्या चीज़ है? यानी रोज़े में हम अपने ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद कर लेते हैं। हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, इज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। एक जायद पाबंदी हम और लगाते हैं और वो ये कि हम मस्जिद में जाके बैठ जाएंगे और बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि जो पाबंदी लगाना है अपने ऊपर, जायज़ चीज़ों पर पाबंदी लगाना महज अल्लाह के हुक्म पर, उससे रोज़े की इब्तिदा हुई और रोज़ा अपने कमाल को पहुँच गया जब आपने एतिकाफ़ भी कर लिया। तो एतिकाफ़ में आप खलवत में बैठ जाते हैं, मस्जिद में थोड़ी देर के लिए गोशा नशीन हो जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप 3 दिन के लिए बैठें, 10 दिन के लिए बैठें, 20 दिन के लिए बैठें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर 10 दिन का एतिकाफ़ किया। तो 10 दिन की मुद्दत एक लिहाज से काफ़ी मुद्दत है कि आदमी खुद एहतसाबी से गुजर जाए, अपने मुताले को ताज़ा कर ले, अपने रब से अपने ताल्लुक़ की तजदीद कर ले। तो एक लिहाज से आप ये देखिए कि रोज़े को ही एक कमाल पर पहुंचा दिया गया है कि आखिरी दर्जे में आप रोज़े से हो गए जब आपने एतकाफ कर लिया।
तो गांधी साहब, इसकी कोई नियत होती है कि मैं 3 दिन रखूं करूं या 7 दिन करूं या 10 दिन करूं, या मैंने नियत की 10 दिन की और मैं 3 या 5 दिन बाद उठ जाऊं?
ये बात यह है कि इरादा तो आप करते हैं, कोई ना कोई इरादा करके ही आदमी किसी काम की इब्तिदा करता है। हज के लिए जाता है, उमरे के लिए जाता है, तो आप इरादा करते हैं। तो अगर तो इरादे की नौयत यह है कि अपने ऊपर कोई चीज़ वाजिब कर ली है, यानी ये कह लिया कि ये मेरे लिए लाजिम है या इतने ही दिन के लिए मुझे ज़रूर बैठना है, तो तब तो उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन महज ख्याल था और ख्याल ये था कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन मैं अल्लाह के लिए एतिकाफ़ में बैठ जाऊँगी, तो उसमें आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं जब चाहें। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो इरादा आपने किया है उसको आप पूरा करें।
सही, एतिकाफ़ को हम किस ज़ुमरे में लेते हैं? फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है?
नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। देखिए, बात यह है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक सुन्नत के तौर पर जारी किया है। जब हम कहते हैं कि फलां चीज़ एक सुन्नत के तौर पर जारी की गई है, तो उसका मतलब यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने हमें उसका हुक्म दिया है या उसकी हिदायत फरमाई है। लेकिन किस हैसियत से हिदायत फरमाई है? 2 हैसियत से आमतौर पर पैगम्बर किसी चीज़ की हिदायत देते हैं, या तो उस चीज़ को लाजिम कर देते हैं। लाजिम कर देने, फ़र्ज़ कर देने, वाजिब कर देने का मतलब ये होता है कि हम वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला अजर देगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह पूछेगा। जैसे अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो इसके लिए अल्लाह सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुआखज़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर तंबीह कर सकते हैं या कोई सजा भी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एतिकाफ का ताल्लुक है, यानी रोज़े को इस कमाल तक पहुँचा देना कि मस्जिद में जाके बैठ गए, इसको लाजिम नहीं किया गया। ये एक नफल इबादत है, यानी अपनी असल के लिहाज से नफल इबादत है। इसको हुजूर ने एक और पैगंबरों ने सुन्नत के तौर पर जारी किया। ये नहीं कि ये इस्लाम में या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से इसकी पैदा हुई है, तमाम अम्बिया के यहाँ ये इबादत रही है। रोज़े की इबादत भी, एतकाफ़ भी इबादत थी। चुनाचे हज़रत इब्राहिम को जब बैतुल्लाह को आबाद करने का हुक्म दिया गया तो उसमें यही लफ्ज़ एतकाफ़ आया है कि एतकाफ़ करने वालों के लिए। तो ये एक इबादत है, नफल इबादत। करेंगे अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो मुआवजा नहीं होगा, पूछा नहीं जाएगा।
क्या एतकाफ़ जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे तक ही महदूद है या फिर साल के और दिनों में भी हम एतकाफ़ में बैठ सकते हैं?
नहीं, एतकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है। तो इस वजह से जब रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं, यानी रोज़े ही को कबाल तक पहुँचाया जाता है एतकाफ़ में। रोज़े के बगैर इसका कोई तस्वीर।
अगर रजब या शाबान के महीने में रोज़े
रोज़ा रखें फिर साथ, यानी आप रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रख के उसी को कमाल तक पहुँचाने का नाम एतकाफ़ है। तो रमज़ान में क्योंकि रोज़े रखे जाते हैं, तो इस वजह से आम तौर पर लोग रमज़ान ही में एतकाफ़ करते हैं। करने को तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बाकायदगी से एतकाफ़ करते थे और 20 दिन का एतकाफ़ भी किया है। बल्कि ये बताया जाता है कि 1 साल आप नहीं कर सके थे, तो इस वजह से आपने 20 दिन फिर अपने आप को मौतकिफ़ रखा। तो 10 दिन चूँकि हुजूर आम तौर पर एतकाफ़ करते थे, इस वजह से लोग 10 दिन को तरजीह देते हैं। ये कोई लाजिम नहीं किया गया, यानी ना पाबंद किया गया है ना लाजिम किया गया है। कम दिनों के लिए भी एतकाफ़ पर बैठा जा सकता है, ज़्यादा दिनों के लिए भी बैठा जा सकता है। पहले अशरे में भी बैठा जा सकता है, दूसरे में भी बैठा जा सकता है। बल्कि बाद रवायतों में आता है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी अशरे में भी एतकाफ़ पर बैठे हैं। तो इस वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं है। आम तरीका आपका ये था कि आखिरी अशरे में बैठते थे। तो मुसलमान जब ये देखते हैं ना उन्हें कोई इबादत करनी है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो इबादत रसूलुल्लाह सल्लम के तरीके पर करें। यानी जो इबादत लाजिम नहीं, उनमें भी मुसलमानों की आम कोशिश ये होती है। इससे ये आखिरी 10 दिन के एतकाफ़ की रवायत कायम हुई, क्योंकि हुजूर ये करते थे। इसकी भी एक वजह है कि क्यों करते थे, यानी आखिरी अशरे ही को क्यों इसके लिए मुंतखब किया। आखिरी अशरे के बारे में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमूमी रवैया है वो भी यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरगीब देते थे। ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ ایک طریقے سے شد میزر ہو ایکز آہلہ ہو، یعنی آپ کچھ کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے کہ زیادہ عبادت کرنی ہے، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے کہ اٹھو عبادت کر لو. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ آخری عشرے میں ایک غیر معمولی رات آتی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا، تو آپ پر ہی قرآن کا نزول ہوا تھا ظاہر ہے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر غور کیا ہے کہ وہ کون سے دن تھے، تو اس میں آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ آخری عشرہ تھا، تو آپ نے اسی کو منتخب کر لیا. یعنی اس میں اس رات کے آنے کے امکان کی وجہ سے اس آخری عشرے کو اعتکاف کا عشرہ اپنے زندگی میں بنا لیا.
تو ہم سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ سنت رسول اعتکاف میں بیٹھنا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ خلوت کی عبادت ہے بیسیکلی. آج کل تو صورت حال یہ کہ مسجدوں میں سینکڑوں پھر اس طرح لوگ اعتکاف میں جاتے، تو وہ خلوت تو نہیں رہتی، پھر کیا کیا جائے؟
مسجد ہی میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور مسجد ہی میں کرنا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بعض مسجدوں کو خاص کر لیتے ہیں جن میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ مسجدیں اتنی کم نہیں ہیں. یعنی اگر آپ چاہیں تو آج بھی ایسی مسجدیں تلاش کر سکتے ہیں جن میں بہت خلوت میں آپ جا کے بیٹھ جائیں. پھر مسجد میں بھی یہ معلوم ہے کہ اس میں کچھ کپڑے کا ایسا ایک اعتکاف کی جگہ بنا لی جاتی ہے تاکہ آپ خلوت میں بیٹھ سکیں. مسجد کے اندر فرض کر لیجئے 400 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول ایسا بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے گپیں لگائی جا رہی ہیں یا اب تبادلہ خیالات ہو رہا ہے. اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے خلوت خانے میں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے صحن میں عام طور پر اعتکاف کا ایک بنا دیا جاتا تھا، یعنی آپ سمجھے ایک قبہ سا بنا دیا جاتا تھا جس میں حضور بیٹھ جاتے تھے، اسی سے باہر آ کے بھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے اور زیادہ تر وقت اس کے اندر گزارتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف پہ بیٹھتی تھی جب، تو مسجد ہی میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے یا اس طرح کا کوئی گھاس پھونس کا ایک قبہ سا بنا دیا جاتا تھا جس میں وہ بیٹھ کے اعتکاف کر لیتی. تو مسجد میں الگ ہو کے بیٹھنا اسی کا نام اعتکاف.
تو اگر ایک عورت کے لیے یہ پرمیسیبل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے اگر اس کے ہیں اور ان کو اکیلا چھوڑنے کے ڈر سے وہ اگر اپنے گھر میں ہی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے،
یہ اصل چیز تو یہی ہے کہ مسجدوں میں ان کے لیے اہتمام کیا جائے. اور مسجدوں میں ہمارے ہاں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں، مثلا پاکستان میں میں جانتا ہوں، جن میں بہت اچھا بندوبست کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کسی خاتون کی تو وہ اجر نیت کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں، میں مسجد میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی، کہ مسجد میں کوئی اہتمام نہیں ہے یا میرے بچوں کا معاملہ ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی الگ جگہ بنا لی ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. یعنی یہ دو اصول ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اصل میں ایک کام کیسے کرنا ہے، دوسرا یہ کوئی مجبوری پیش آ جائے تو اس میں کیسے کرنا ہے. تو مجبوری میں خواتین گھر کے،
اور اگر ایک خاتون کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے اور مسجد میں بیٹھے لیکن اس کا شوہر اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا، وہ افطاری دینے کا بھی مسئلہ ہے، گھر میں کام کون کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ اپنی خواہش ترک کر دے؟
یہ بات یہ ہے کہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ بڑی مجبوری ہے، یعنی شوہر کو بھی تعاون کرنا چاہیے نا. ہم اپنی باہمی زندگی میں بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے لیے اظہار کرتے ہیں، تو اگر اظہار کر سکتا ہے وہ اور اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی باعث اجر ہو جائے گا. یعنی ایک طرف وہ بیوی اعتکاف کرے گی، دوسری طرف شوہر اظہار کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا. تو کرنا تو یہی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کسی کی تو پھر گھر میں بیٹھ.
مختصر سا جواب، کورس کی کتابیں لے جا سکتے ہیں اعتکاف میں، فونز کا استعمال، اب تو اسمارٹ فونز ہیں تو آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں،
ان سب کو گھر میں چھوڑ جائیے، ورنہ پھر اعتکاف نہ کریں بہتر ہی ہے. یہ عبادت ہے اللہ کے لیے، آپ کو الگ ہونا ہے. تو اگر آپ کے پاس بہت مصروفیات ہیں تو آج راہ کرم نہ جائیے، کیونکہ اللہ نے لازم تو نہیں کیا اس کو، جانا ہے تو پھر پورے آداب کے ساتھ احترام کے ساتھ.